the bus rapid.
No, no, we're going right now. With Liverpool.
Oh,
ब्रह्मचर्य अर्थात स्लोगन था एक ब्रह्मचर्य अर्थात संकल्प और बोध में पवित्रता के वाइब्रेशन है। संकल्प में पवित्रता के वाइब्रेशन और बोध में पवित्रता के वाइब्रेशन कैसे पाएंगे?
मैं भी बोल रहा था।
पवित्रता साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करो, साधारणता को ही अलौकिकता में, उसी के आगे का वाक्य अलौकिकता में परिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा संकल्प में पवित्रता वाइब्रेशन या फिर बोल, क्या बोल, पवित्रता के वाइब्रेशन संकल्प में और बोल में, हमारे संकल्प प्योर हो, केवल प्योर नहीं, इतने प्योर कि उसमें से वाइब्रेशन
नहीं।
एक होता है खुद के लिए प्योरिटी, एक होता है इतनी ज्यादा प्योरिटी बढ़ा दिया कि उसमें से वाइब्रेशंस निकलने चालू हो गए, अभी
जैसे बाष्पीकरण पानी
का, उसमें से वाइब्रेशंस निकल गए और वो वाइब्रेशंस फैल गए संपूर्ण देह में, फैल गए, एक देह भी पूरा हो गया, अभी देह से भी बाहर निकल गए, विश्व में फैल गए। एक योग का प्रयोग ऐसा भी है कि मैं आत्मा गुरुकुटी के मध्य में बैठी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें संपूर्ण देह में जा रही है, उसके बाद देह से पवित्रता की किरणें निकलकर अब इस कमरे में जा रही है, अभी धीरे धीरे इस कमरे से भी निकलकर संपूर्ण मधुबन में जा रही है, फिर मधुबन से भी निकलकर पूरा माउंट में जा रही है, फिर धीरे धीरे फैलाओ खींचने के लिए, फिर अभी धीरे धीरे ये माउंट से निकल कर पूरे राजस्थान में फैल रही है, संपूर्ण राजस्थान की आत्माओं को जैसे अनुभव हो रहा है, करना है हमको महसूस, जितना डेप्थ में हमारी महसूसता होगी समझ लेना वो किरने पहुंच रही है, हम अगर किसी डीप अनुभव में खो गए तो समझ लेना, अगर हम किसी को सकाश दे रहे हैं, अब ये कैसा माने कि उसको सकाश मिल रही है नहीं मिल रही है, अगर हमको बहुत डीप रियलाइजेशन हो जाता है तो समझ लेना वो किरने उससे पहुंच गए, फिर धीरे धीरे
भाव
हो जाते
हैं,
भाव
मन बुद्धि इधर को जाने का मार्जिन नहीं रहा,
मार्जिन नहीं है, तो अगर हम कुछ भेज रहे हैं तो पहुंचना ही है, हम वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना तो पहुंचना ही है, कहां जाएंगे, वही जाएंगे, धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रही है वाइब्रेशन, हम बीच में और हमसे संपूर्ण भारत में प्योरिटी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, धीरे धीरे संपूर्ण एशिया, संपूर्ण विश्व, तो लास्ट में इमेजिन करो मैं आत्मा और मुझसे संपूर्ण विश्व में प्योरिटी के वाइब्रेशन जा रहे हैं, जो आत्मा विकारी है देह की तरफ जिनका आकर्षण है, अचानक उनका देह से आकर्षण कम हो रहा है, उनको ऐसे अनुभव हो रहा है कि अभी जैसे पता नहीं देह में आकर्षण अचानक से कम हो गया, कशिश, क्योंकि वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं, इस समय संसार में क्या है, काम वासना, आंधी है, तूफान है, आग लगी है, ये इन हवाओं में भी वासनाएं हैं,
जितने भी आजकल जो न्यूज आती है ना, जितना कंट्रोल करने की बातें करें उससे ज्यादा बढ़ रहा है,
क्यों, उसका कारण है क्योंकि अंधेरे से अंधेरे को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए उसके ऊपर और फोकस दिया जा रहा है, अगर कोई एक न्यूज है उस न्यूज को इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि वो न्यूज को देखकर ही वासनाएं उत्पन्न हो रही
है,
उसका मार्ग है प्रकाश, अंधेरे को अंधेरे से लड़ रहे कि अंधेरे को निकालो बाहर, तो वैसा नहीं हो सकता है, जितना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कोई चीज को, जितना ज्यादा मीडिया हाईलाइट कर रही है उतना ज्यादा वो समझ में आ रहा है, छोटे बच्चों को पता नहीं है सब बातें पर उनको समझ में आ रहा है, उससे
बेहतर बनता जा रहा है,
इसके लिए पहले जमाने में गुरुकुल में रहते थे बच्चे, तो उनको कहाँ काम, पहले तो ब्रह्मचारी आश्रम रहता था फिर गृहस्थ आश्रम में जाते थे वो, तो तब तक थोड़ी ना वासना, ये मतलब संपर्क ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं, मतलब पढ़ाई पढ़ते थे तो ब्रह्मचर्य में पढ़ाई जाती थी पढ़ाई, अभी तो कहाँ से पढ़ाई पढ़ेंगे, वो तो बचपन से ही इस तरह के विकारी वासनाएं हैं, तो इस समय संसार में हवाओं में भी वासनाएं हैं, हवाओं में भी विकार है, हवाओं में भी क्रोध के वाइब्रेशन,
क्योंकि लिए हर एक मैसेज गंदी मैसेज लेन देन चलते रहो,
जितना ज्यादा मैसेज इंटरनेट टीवी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक से तो हवा में वो क्योंकि वो जा रहे हैं ना वाइब्रेशन तो जा रहे हैं वो तो हवा में है ही है कंटिन्यू।
अगर कोई विरोध भी करते है कुछ हो रहा है उसका, उस विरोध करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही और भड़क रहा है क्योंकि उसमें उसका चिंतन तो चल रहा है। और पवित्रता की विधि है कि संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, संकल्प भी उससे मुक्त हो जाए तो वो कहाँ हो जाए। इसके लिए संसार को पवित्रता की आवश्यकता है, पवित्रता के वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा अपने संकल्प और बोल में प्यूरिटी की वाइब्रेशंस हो, वो है ब्रह्मचारी। केवल खुद के लिए नहीं, आज की मुरली में जैसे है ना दूसरों को भी संतुष्ट करना है, स्वयं संतुष्ट हो गया इसको योग उसे राजयोग की भी ये परिभाषा नहीं है। वास्तविक राजयोगी वास्तविक कर्मयोगी कौन है, बहुत गुह्य है उसकी सारे राज। तो सबसे पहला तो अपनी प्यूरिटी को बढ़ाना है। प्यूरिटी को बढ़ाने का एकमात्र साधन है देह की ओर बार बार बुद्धि न जाए। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा देह को देखने से कट चढ़ती है, आत्मा को देखने से कट उतरती है। कितना डीप वाक्य है देखो, केवल देखा तो कट चढ़ी और देह ही दिखता है, आत्मा दिखती ही नहीं है। तो जो दिख रहा है
वही देखना है,
वही देखना है, वही दिख रहा है। इसके लिए सन्यासी तो नीचे देखकर ही चलते थे, तीसरी बटन देखते ही नहीं थे कहीं, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि देखने मात्र से वासनाएं उत्पन्न होती है। और बाबा ने तो कहा आत्मा देखो, तो बहुत ऊंची स्टेज है। आज बोला ना एक जगह जंगल में जाकर योगी बनना कठिन है, यहाँ राजयोगी बनना सहज है, या ये मुश्किल है वो कठिन ये कठिन है वो मुश्किल वो सहज है। कोई भी चीज की जब चर्चा की जाती है गंदी बात की, कोई वायलेंस या कोई विकार या किसी भी, तो उस चर्चा से ही वाइब्रेशन फैलते, उसी से पतन चालू हो जाता है क्योंकि उसमें परचिंतन होता है। परचिंतन पतन की जड़ है, इसमें स्वचिंतन है ही नहीं। इसके लिए हमारा जो मार्ग है एकदम दुनिया से हटके है, उस मार्ग में हम नहीं जा सकते जिसमें संसार जा रहे हैं। हमारा मार्ग कहीं और जाता है, ये तपस्या का मार्ग है, कठोर तपस्या का मार्ग है, सहज कुछ नहीं है इसमें, जबरदस्त तपस्या चाहिए, बहुत ज्यादा तपस्या। प्यूरिटी की तरफ ध्यान मतलब देह में, उस दिन एक मुरली पूरी देह पर चली ना, देह क्या है बासी बदबू सड़ा हुआ छींची गंदा, ऐसे ऐसे शब्द थे उसमें। तुमको इस देह की तरफ देखना ही नहीं है बाबा ने कहा, और देह ही सबसे ज्यादा कशिश को निकालना है। उसी मुख्य में था ना
सर, कितना भी सुंदर लेकिन आत्मा तो काली है।
हाँ कितना भी खूबसूरत है, जो खूबसूरत और सफेद चमड़ी वाले तो उनको भी अपना नशा होता है बाबा ने कहा।
शरीर तो
पति थी है, शरीर चाहे कोई कितना भी सुंदर है वो सुंदर है ही नहीं पहली बात।
शरीर सुधरने वाले है,
सुंदर शरीर है ही नहीं,
सुधरने वाला है ही नहीं,
कभी नहीं सुधरेगा बाबा ने उसी दिन पुराना है और कभी सुधरने वाला है नहीं। आत्मा सुधरने वाली है, शरीर सुधरने वाला नहीं है, शरीर पुराना है, बदबू है इसमें। उस दिन मुरली में तीन शब्द थे, एक तो बदबू बासी और छींची, तीनों शब्दों के ऊपर चिंतन करने का विषय है। बासी है, बासी चीज को कहाँ रखा जाता है घर में, क्या होता है बासी चीज से, बदबू आती है, इन्फेक्शन होता है अगर खा लिया तो, डायरिया फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये देह भी बासी है, कोई कितना भी सुंदर है परंतु वो बासी है। परंतु जब किसी को किसी से मोहित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका सब कुछ अच्छा लगने लगता है, उसका पसीना भी अच्छा लगने लगता है। लैला मजनू ये जो भी है ना, जो संसार के जिस्मानी प्यार वाले जो है, उनको सब अच्छा लगने लगता है शुरुआत में, और जैसे जैसे कोई दो प्रेमी है सब अच्छा लगता है, पहले शादी होती है और कुछ साल के बाद तो ऐसी हालत हो जाती थी कि वो उसको गला दबा के मार दे, तब इतनी घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो वो जो पहले था वो प्यार नहीं था, वो केवल एक शारीरिक आकर्षण था बस। बाद में जब एक दूसरों का स्वभाव पता चला तो पता चला कि इसका स्वभाव तो एकदम भिन्न है, एकदम दूसरा है। वो जो पहले था वो जिसको हम प्यार समझ रहे थे वो प्यार था ही नहीं, वो केवल एक क्षणिक इन्फैचुएशन इंग्लिश में कहते हैं, एक आकर्षण था बस दैहिक, उसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा था। तो ये शरीर बदबू वाला एक शब्द, दूसरा छीछी। बदबू वाले वस्तु को हम घर पे रखते नहीं, बासी वस्तु को बाहर फेंक देते हैं। छीछी डर्टी कुछ है शरीर
साफ है,
साफ
है, ये मनी है,
आत्मा मनी
है, आत्मा मनी है।
सभी जो दुखों का कारण ये भी एक कारण है कि एक दूसरे का संस्कार नहीं मिल रहा है,
ये शव है, ये शिव है
सभी। बाकी ऐसे प्यार होता है बच्चे का भी माँ बाप
संसार में, प्यार हो तो बहुत अच्छा है,
लेकिन
हम तो उसके विरोध में नहीं है। कोई अगर शादी करके बहुत प्यार से जिंदगी जी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, चलो वो भी ठीक है। क्योंकि संसार में इतनी नफरत है सब जगह, उसमें से अगर कोई दो व्यक्ति प्यार कर रहे हैं तो भी ठीक है, उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए, करो तुम एटलीस्ट प्यार कर रहे हैं ना, उसका ये तो नहीं है, नफरत तो नहीं है। संसार में घृणा है, नफरत है, वायलेंस है संसार में।
प्यार भी स्वार्थ वाला रहेगा।
हाँ वो प्यार कैसा है, वो प्यार केवल एक दूसरे के प्रति है, वासना है और उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा है।
वो प्यार ऐसा नहीं है कि जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बताया कि दो पति पत्नी उसको मिले, कोई बूढ़े थे तो वो कहते थे हमारा एक दूसरे से बहुत प्यार है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि एक पत्नी अपने पति की सारी उम्र भर सेवा करती है और वो कहता है कि इससे ज्यादा और मेरे को कोई प्यार नहीं करता है। पर उसने बोला कि अगर एक नौकर भी तो सेवा करता है माँ बाप मालिक की, उसका तो कोई वर्णन नहीं है कहीं ज्यादा, इस प्यार का क्यों है सिर्फ
वही। उसमें
वासनाएं समाई होती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती है। जैसे मैं बीमार पड़ूं तो मुझे कोई देखे, मेरी कोई मदद करे, मुझे कोई पूछे, मेरी कोई महिमा करे, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना ज्यादा दुख।
आधार ले
लिया किसी वस्तु का, व्यक्ति का, परमात्मा के अतिरिक्त किसी और भी संसार में किसी का भी आधार लेना मतलब दुख को आमंत्रण देना है।
एकदम एक पति व्रता पिता व्रता व्रता चाहिए एकदम
शिव बाबा से ना।
हाँ
अव्यभिचारी याद बाबा ने कहा है, बाप से अव्यभिचारी याद मतलब उसके अतिरिक्त
अतिरिक्त कुछ नहीं, इतना एक व्रता।
जैसे कोई एक पतिव्रता नारी होती है वो किसी पर पुरुष के बारे में संकल्प में भी नहीं सोच सकती, संकल्प में भी आना महापाप गिना जाता है पतिव्रता नारी के लिए। तो यहाँ सबकी शादी तो उससे हुई है जो पतियों का पति है, अभी उसके अतिरिक्त
कहीं और भी
जाता, कहीं सोचना कि ये मेरी मदद, मैं बीमार हूँ तो ये मुझे कोई पानी दे, कोई मेरे कमरे वाला है मुझे पूछे, ये सब इच्छाएं उत्पन्न होती है सहज, कोई हमको ना पूछे ये इच्छा। बाबा देखने वाला भगवान ही, आप भगवान हमारे लिए क्यों कुछ नहीं करता है, क्योंकि हम पूर्ण समर्पित नहीं है उसके आगे। एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, माँ उधर खड़ी है और इतना छोटा बच्चा है, उधर से ट्रक आ रहा है, उसको चिंता है कोई? उसको पता है कुछ भी हो जाए मेरी माँ मेरे को ले लेगी, वो खुद प्रयत्न भी नहीं कर, प्रयत्न नहीं, इतना समर्पण अर्थात संपूर्ण समर्पण भाव है वो उसको पता है वो कैसे भी करके मुझे ले लेगी और मेरी रक्षा करेगी। या फिर माँ अपने बेटे के साथ है, शेर आ गया तो बच्चा थोड़ी डरता है,
सांप और कोबरा और एक बच्चा था ना छोटा,
हाँ।
वो कोबरे की आगे खड़ा हो गया, वो तो कोबरा उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, वो हटा ही नहीं रहा उसके, उसको फिर ऐसे पकड़ रहा है वो
मतलब
कोबरे डरा नहीं उसको
जैसे, हाँ। वो एक दूसरा उदाहरण है, हमारा जितना परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है उतना वो हमारी उस हिसाब से हमारी रक्षा करेगा। जैसे प्रहलाद का दिखाते हैं ना, भक्त प्रहलाद संपूर्ण समर्पित है वो, इसके लिए कुछ भी हो रहा है उसके साथ, प्रहलाद के साथ भगवान उसकी जगह जगह पर रक्षा कर रहे हैं।
यदि आपको प्यास लगी, बीमार है प्यास लगी और कोई नहीं, तो आप सिर्फ बोलो बाबा मुझे प्यास लगी है, तो आपको टक टक आएगा, आपको कुछ चाहिए
मतलब इतना एक इसमें इसका गलत अर्थ भी लिया जा सकता है कि पुरुषार्थ करना नहीं, मतलब इसका थोड़ा गलत अर्थ, एक है संपूर्ण समर्पण, पुरुषार्थ तो करना है पर पुरुषार्थ करने के बाद भी संपूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर मुझे कोई काम दिया मैं नहीं करूं सब कुछ करूँ, मन लगा के करूँ, दिल से करूँ, अर्पण, पर होते ही समर्पण कर, समर्पण करूँ बस, वो मुझे टच ना करे, पूर्ण समर्पण कि बस उसका परिणाम अभी कुछ नहीं
जो हो गया,
हाँ। और ये जो दुख वाली परिस्थितियां है, बीमारी वाली परिस्थितियां, उसमें जितना ज्यादा समर्पण भाव उतनी ज्यादा मदद। जैसे उदाहरण बताते हैं,
जैसे वो है ही
हाँ, पर ये बहुत ऊंची स्टेज है आप जो बता रहे हैं,
संपूर्ण
वेरी वेरी टॉप लेवल, वेरी टॉप लेवल की स्टेज यही है कि जिसमें अध्यात्म में बुद्धि संपूर्ण समर्पण।
बाबा ने बोला काम चलाओ प्यार को रखना, एक मुरली में था
ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका खिलौना टूट गया, तो उसने बहुत कोशिश की उसको जोड़ने की खिलौने को, फिर नहीं हुआ, तो फिर भगवान के पास लेके गया कि इसको जोड़ो, तो वो बैठ गया, एक पोएम है ये, तो भगवान ने उसको जोड़ना चालू किया, तो वो देख रहा है, वो बोल रहा है अरे ऐसे नहीं, इधर लगाओ। फिर बोल रहा है अरे इधर कहाँ लगा दिया तुमने, उधर लगाओ। अरे ये ऐसा थोड़ी लगता है, इसको नीचे से लगाओ, फिर ऊपर से लगाओ। तो वो बता रहा है मतलब ऐसे करो वैसे करो, हाँ भगवान मतलब उससे हुआ नहीं तो उसने दिया भगवान को, तो भगवान ठीक कर रहा है उसको। तो फिर ऐसे बताते रहा, फिर भगवान ने बोला लो तू ठीक करते रहा। तो समर्पण भाव वाली बात है, एक है एक बार समर्पित कर दिया कि फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, फिर वो जैसा करे वैसा।
तेल खत्म हुआ था तो सुबह ही मैंने बाबा को बोला बाबा तेल 9 बजे अंदर हो गई, तेल की बोतल जो हमें देने वाली हमेशा तेल लाने वाली माता तेल लेकर हाजिर हो गई 9 बजे।
जितना ज्यादा समर्पण भाव उतना बाबा की मदद। बाबा ने उस दिन वरदान था ना, पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं कुछ कुछ, उन्होंने भगवान को वश ये कर दिया है, क्या कहेंगे उसको, भगवान को मतलब वश कर दिया है कि खुद को मदद करने के लिए, हाँ आकर्षित कर दिया, स्वयं पदम गुना बाप के मदद के पात्र बना दिया है। अभी एक माता आई है हॉस्पिटल में किसी एक बहन के साथ में, बहन बीमार है, वो माता आई है, आई भी उसने अनुभव सुना इतना जबरदस्त अनुभव है, इतनी बूढ़ी माता अकेली आई, कोई था नहीं, जो एक भाई उसको छोड़ने वाला था वो टाइम पे आया ही नहीं, ट्रेन में कॉमन बोगी में बैठ के आई, उसके बेटे का फोन आया कैसे जा रही हो, तो उसने झूठ बोला कि 2 माताएं हैं मेरे साथ और और मुझे पूछ रही है ठीक किया ना मैंने, बाबा के लिए झूठ बोल सकते हैं ना, ऐसे मुझे पूछ रही है क्योंकि ये बहन एक एडमिट है, तो उसने उसको सेवा में बुलाया माता जी को, तो माता जी एकदम तुरंत निकल पड़ी वहां से, कभी अकेली ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया, पर इतना निश्चय कि बाबा की गोद में बैठ के अभी मुझे जाना है, तो उसको जो बिठाने वाला था भाई वो भी नहीं आए उधर, फिर बैठ गई, बैठ गए तो इतनी भीड़ कॉमन बुगी में, उसको इतना सा बैठने को जगह नहीं, कैसे तो भी किसी ने उसको ऊपर जगह दे दी और बैठ गई। फिर उसको पालनपुर आया, फिर प्यास लगी उसको, तो उसको लगा कि पानी पियो क्या, फिर वो गया क्यों पियू पानी, शांतिवन तो अभी आने वाला है, बाबा के पैसे क्यों खर्च करूं। देखो कितना मतलब बहुत सूक्ष्म बात है ये। आई शांतिवन में, पहले वहां पहुंची, वहां से किसी ने हाँ छोड़ दिया शांतिवन में, शांतिवन में पहुंची तो कहाँ जाना है वो बता ही नहीं उसको, अभी कैसे जाऊं वो तो ऊपर है। फिर कोई किसी को फोन लगाया, वो फोन भी उसको आता नहीं हिंदी, वो मराठी में नंबर उसको पता है तो वो भी मुश्किल हो गया। फिर किसी ने तो भी उसको मदद किया, कमरा भी दिया और फिर 7:30 की गाड़ी से ऊपर आई, मतलब इतना निश्चय बुद्धि। और उसने एक और एक ऐसी बात बता दी, उसने एक संकल्प लिया 1,00,000 बार वरदान लिखना और 1,00,000 बार उसके 20,000 हो गए, रोज का जो वरदान है ना वो लिखना, अभी तक 20,000 हो गए, लिखना डायरी में 1,00,000 बार वरदान और 1,00,000 बार सोमान 15,000 बार हो गए अभी तक, और उसको रोज एक लाख नहीं टोटल,
जब तक माना लिखा जाए उसके ज्यादा भी हो सकता है, जब तक जीना है
तो अभी तक 15,000 सोमान लिख के हो गया। अभी उसमें भी दूसरी स्टोरी की, उसके पास पेन वगैरह कहीं से भी बाबा दे देता है उसको पेन, ऐसे वो बोल रही है, कुछ पेन नहीं रहती है, डायरी नहीं रहती है, तो कहीं से भी उसको पेपर मिल जाता है, कहीं से भी कुछ मिल जाता है। देखो अभी उसको हिंदी भी नहीं आता है बोलना ढंग से, हिंदी मिक्स मराठी मिक्स दोनों, कितना ज्ञान समझ में आया, पर निश्चय इतना ज्यादा है बाबा पर, कितनी भावना है, कोई बहन भी नहीं करती होगी कोई सेंटर की ऐसा पूछताछ की जिसको इतना निश्चय, 1,00,000 बार सोमवार लिखना मतलब कितनी बड़ी बात है,
संकल्प कर लिया,
संकल्प कर लिया ये बस एक, और 20,000 बार हो गया लिख के
एक,
हाँ पूरा वरदान लिखना, पूरा वरदान लिखना, 20,000 वरदान लिख के हो गए अभी तक, और स्लोगन सोमान 15,000 हो गए, गुप्त लोग है जो ज्यादा प्रत्यक्ष है,
वो डायरी डायरी रखते हैं ना, तुम्हें देख तो क्या डायरी, तो देख तो एक ही बात लिखी है पूरी डायरी में,
वो लिखना भी बहुत बहुत, उससे क्या होता है प्रभाव पड़ता है, जैसे एक ही समाज लिखा जाए, मैं एक महान आत्मा हूँ, आज की बोली से महाराष्ट्र को पार्टी से मुलाकात में मैं एक महान आत्मा हूँ, बस लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, श्रेष्ठ आत्मा हूँ महान आत्मा हूँ, वो ऑटोमेटिक इधर घुस जाता है सब अंतर मन में समा जाता है, हाँ उसमें धीरे धीरे टिक जाता है, लिखते लिखते ही उसमें टिकना चालू हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे रत्न है बाबा के छिपे हुए, जो दिख रहे हैं ना वो छिप जाएंगे, और ना वो बाहर निकलेंगे एक दिन सारे, जो हमको पता भी नहीं, कितने बड़े बड़े संकल्प करके है, हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं,
माता है उनको देख के लगता क्या पुरुषार्थ,
लिखने से बहुत अच्छा रहता है, मैंने देखा टाइप से भी बहुत अच्छा
लगता, टाइप
स्वच्छता का दिया था, बोला टाइप करो, तो मैं नया नया सीखा था, शौक भी था, सारा टाइप कर लिया, गलत से, और वो मेरे पता नहीं कैसे डिलीट हो गया,
अब ये मिला है तो पढ़ते नहीं है
फिर दोबारा किया ना, मतलब बहुत दिन तक तो ये लगता रहा मेरे को जाने चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसमें संतुष्टता ऐसा कुछ था नहीं, कभी सारा बहुत संतुष्ट था, टाइप करना उसको देखना फिर एडिट करना करना, तो पूरा
वो बुद्धि उसमें टिकती है उतने समय के लिए,
बहुत अच्छा हो गया,
एक है मुरली पढ़ लेना, एक है 15 मिनट में मुरली सुन लिया, 15 मिनट में मुरली पढ़ लिया, ये एक प्रोग्राम है, पर उससे कितना कुछ असर, वो थोड़ा समाना चाहिए उसको, टाइम चाहिए, एक एक वाक्य के अंदर में समा जाए, चित्त में ऐसे स्टैंप लग जाए, इसको टाइम लगता है, जल्दबाजी का काम नहीं है,
एक चीज की जा सकती जैसे भी मुरलियां सब तेगी, तो उसमें आत्मा के बारे में भगवान ने क्या है ना, उसमें परमात्मा के बारे में क्या है, हम अपना एक तो बड़ा बड़ा मटेरियल उसको पढ़ते हैं, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है,
जो बना बनाया अगर कोई मुझे दे दे ये पूरे सीजन की हफ्तियों की मुरलियों का सार, पढ़ा कुछ नहीं इधर से पढ़ा गया,
जो खुद करते हैं वो उसमें मजा आता है,
उस दिन मैंने जो लिखा ना,
इसके लिए मैं तो
याद
है, जो भी है ना मुरली तो याद करने की वस्तु तो है नहीं, वो स्वतः याद हो जाए, जैसे बाबा प्रेमियों का जिस्मानी प्यार, अभी कल परसों ही था ना मुरली में, एक दूसरे को याद, बाबा कहते किसी भी स्थान पर मुझे याद करो, चलते फिरते उठते बैठते, ये केवल योग में बैठे तब याद में है, याद योग से उठे और याद भूल गई, ये तो है नहीं, निरंतर योगी
टूटना मुश्किल हो जाएगी,
टूटना मुश्किल हो जाए, लास्ट संडे ऐसे था ना,
संडे
लास्ट संडे, तो ऐसी स्थिति
स्टूडेंट लाइफ,
गॉडली स्टूडेंट लाइफ, चलो और क्या बोला ये हफ्ते में कुछ अच्छी पॉइंट्स, धारणा वाली पॉइंट बताओ,
बल से आयु बढ़ता,
भगवान कहा चलते फिरते ये चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, सहज योग लगा
रहेगा,
हाँ सहज योगी, और चिंतन चाहिए,
धारणा वाली पॉइंट,
अंतर्मुखी बनो,
स्वयं की जांच करो, अंतर्मुखी बनो, मुख कहाँ है बाहर है उसको अंदर, इसको यहाँ से घुमा के अंदर कर दो, मतलब खुद से बात करो, अभी दुनिया से बात कर रहे हैं ना, बाहर है बाह्य मुखी अंतर्मुखी, क्रोध पर मुरली चली पूरी, काम पर मुरली चली पूरी, और लोभ पर मुरली चलू, ये खाऊं वो खाऊं, अंडा खाऊं ये खाऊं,
पूरी पांच भूतों पे
बाबा ने किसी, कोई एक भूत अगर किसी में प्रवेश कर जाता है तो हालत खराब हो जाती है, एक ही भूत, कोई एक आत्मा अगर प्रवेश करती है तो कैसे पागल जैसा करता है आदमी, यहाँ पांच पांच प्रवेश कर चुके हैं, उसमें भी बाल बच्चे अपने वंशों के साथ परिवार के साथ, पांच भूत विद देयर फैमिली फुल प्रवेश है,
सात भूत खेल की टीचर ने क्लास कराया, सात भूत प्रवेश, ये हुए आया, रात को। अब आपने सुना होगा?
मैं सुना नहीं, लेकिन ऐसे सुना,
बहुत अच्छा था। और वो रात को 12 बजे आए और इसका ही नाम लिया कि यही निकालेगी, क्योंकि इनकी सेवा ही इन्होंने की थी, शास्त्रीय आत्मा की इसने सेवा की, तो इनको इस पर विश्वास था कि यही हमारा मना। इस तरह से वो आए, फिर अभी आपका टाइम क्या आएगा?
तो पांच भूत एक साथ प्रवेश है,
गोला लड्डू चाहिए। तो मना इस
ये तो फिर भी स्थूल, मतलब यहाँ तो जो भूत है वो तो इतने बहुत बड़े बड़े भूत है, एक एक भूत
क्रोध का ही कितना,
क्रोध का ही इतना विस्तार है, इतना विस्तार है। क्रोध केवल क्रोध नहीं, क्रोध में जोर से बोलना, आवेश, रोभ, ये सारे क्रोध में आ जाते हैं। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सब 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 एक जगह, मतलब मन की जो तुलना एक विवेकानंद ने एक जगह लिखी है, मन उस बंदर की तरह है, चंचलता, मन की चंचलता कैसी है, एक बंदर है, अभी बंदर की तरह है, मतलब बंदर पहले से ही चंचल है, एक जो बंदर होता है वो पहले से ही चंचल है उसकी तरह है। अभी ये जो बंदर है इसमें एक भूत ने प्रवेश कर लिया उस बंदर में, तो उसकी चंचलता और ज्यादा बढ़ गई। अभी इसके बाद किसी ने उसको थोड़ा दारू पिला दिया, तो ये जो बंदर है जिसमें भूत प्रवेश है और किसी ने उसको, ऐसा हमारा मन है, इतना चंचल,
चंचलता में चंचलता।
मतलब एक मिनट भी कहीं टिक नहीं सकता है, वो भागता है यहाँ से वहाँ,
शरीर बंद हो गया।
तो ये सारे जो वासनाएं हैं,
बंदर को कभी भी शांत देखा ही नहीं,
कभी नहीं, उसका स्वभाव ही चंचल है। तो मन का भी स्वभाव ऐसा है। अभी ऐसे चंचल मन को अर्जुन पूछता है ना कि हे कृष्ण, चंचल है मना कृष्ण, हवा को वश में करने जैसा है मन को वश में करना अर्थात। तो पर उत्तर में दिया हुआ है अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जाए, वैराग्य चाहिए और अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, हर दिन मन भागे वापस उसको स्थिर करो, तो मतलब योग की प्रैक्टिस
करना ही पड़ता है थोड़ा,
बिना हटियोग के कुछ नहीं होने,
तलवार के धार पर चलना है,
बिना हटियोग के कुछ नहीं होना। बाबा ने सहज बोला है, बाबा ने सब कुछ बोल के रखा है, वो तो बाबा जो बोलते हैं ना ये बहुत सहज राज, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तपस्या का मार्ग है, ये ब्रह्मचर्य का मार्ग है, कठोर तपस्या चाहिए। जो सन्यासी जो तपस्या करते हैं उससे कई गुना ज्यादा, जो जैन लोग तपस्या करते हैं उससे कई गुना ज्यादा इधर चाहिए, बिना, क्योंकि ये सबसे इतना आसान मार्ग थोड़ी ना, पर मतलब हिम्मत नहीं हारनी,
सफलता मिल जाती
पहले से निश्चित है, बाबा ने 100% निश्चित है, एक वरदान था ना,
इसलिए फिर सहज लगता है वो,
इसके लिए सहज, वो सहज बोलना मतलब वो हायर कोई सब नहीं बोल सकते, वो सहज जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए सहज है, बाकी लोग के लिए नहीं है।
छोटी सी चीज अगर किसी को चाय बनानी नहीं आती है, अगर पहली बार उसको बोलोगे बहुत ही
मुश्किल है, पर बार बार अभ्यास करने से समझ हो जाए। चलो, तो एक तो क्रोध क्या क्या करता है, क्रोध नुकसान करता है, बात को याद नहीं करने देता है, मटके सुखा देता है, भारत का मटका जो भरा था सूख गया, कंगाल बना दिया, क्रोध क्रोध से सत्यानाश कर देता है, बाबा ने कहा सारे झगड़ाता है, इतना तपाता है कि खुद भी जलते हैं और बाकी घर को भी जलाता है, आग है, आग सत्यानाश कर देता है पूरा, क्रोध भूत है, क्रोध है, आग है, ये सब। और काम के लिए भी फिर वो बच्चू बादशाह और फिरू वजीर, एक है बच्चू बादशाह काम और एक है फिरू वजीर, वो भी कोई कम नहीं है। और क्या बोला ये हफ्ते में, धारणा वाली पॉइंट, धारणा वाली पॉइंट बताओ,
दुनिया से वैराग्य नहीं चाहिए, दुनिया से नफरत चाहिए।
बाप तुमको दुनिया से नफरत दिलाते हैं, और एक चीज से नफरत दिलाते हैं, देह से। तो दुनिया से तो नफरत, तो प्यार इतना ज्यादा है, अभी उस प्यार में नफरत उत्पन्न करने के लिए दुनिया के थोड़े दोष देखना पड़ेगा ओवरऑल, कि दुनिया में दुख ही दुख है, दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, ये शादी तो बिल्कुल ही बर्बादी है, इस तरह के सारे जो दोष बुद्धि होती है ना, कोई भी चीज से दूर जाने के लिए उसके दोष देखो, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, जरा व्याधि, सब में दुख ही दुख है, कोई सुखी है संसार में? देखो जरा, स्टडी करो किसी की भी लाइफ, कोई नहीं है। अच्छे अच्छे जो लोग हमको लगते हैं बहुत अच्छे हैं, ये फिल्म स्टार, ये सबका अंदर का जीवन देखो,
अंदर खोखला
खोखला एकदम, कुछ नहीं है, बल ही नहीं है, सब लखपति करोड़पति जो भी होगा अंदर में बेचैन है, अस्थिर है, अस्वस्थ है,
क्या हर चीज नहीं है ना उनके पास।
हाँ बाबा ने एक वरदान में बोला ना, अविनाशी प्राप्तियां तुमको यहाँ मिलती है। उनकी जो प्राप्तियां है ना वो विनाशी प्राप्ति है, अभी हमारे पास है अविनाशी प्राप्तियां। अब अविनाशी प्राप्तियां अर्थात क्या क्या हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना, चार पांच, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम दुआएं पुण्य कर्म खुशी, ये है अविनाशी प्राप्तियां। उनके पास विनाशी प्राप्तियां धन संपत्ति गाड़ी बंगला संबंध जो दिख रहा है, ये जो अविनाशी है वो दिखता नहीं है। हाँ वो जो सब दिखता है पर वो सब विनाशी है, उसमें अल्पकाल का सुख है, तुरंत एक पाते ही दूसरे चाहिए
सुख है, विषय दुख है।
हाँ समाया है उसमें। तो दोष बुद्धि रखना है संसार के प्रति, वो ब्राह्मण आत्माओं के लिए वो दूसरी बात है, आपसी प्यार होना चाहिए, पर संसार से एक रीति से ना आंतरिक वैराग्य के लिए थोड़ा डिटैचमेंट चाहिए, नहीं चाहिए बिल्कुल। ये संसार एकदम जैसे लगे कि एक जंजाल है, एकदम उससे तुच्छ है, भागो इससे दूर, रुकना ही नहीं है इसमें, चाहिए ही नहीं यहाँ का ना कुछ, कोई भी वस्तु नहीं चाहिए,
नहीं
बस अभी चले ऊपर, ये शरीर भी नहीं चाहिए। बाबा तो कहते हैं ना तुमको इस दुनिया में रहना नहीं है, बाप आए हैं तुमको ले जाने के लिए, ये है दुखदान, दुखों की दुनिया, पापात्माओं की दुनिया, ठगों की दुनिया। वो दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारा आपस में तुम भाई भाई हो, ब्राह्मण परिवार में किसी भी आत्मा से घृणा नहीं होना चाहिए, इस नाटक में किसी भी एक्टर से घृणा नहीं होनी चाहिए, ये ड्रामा के भी पॉइंट है और आपसी प्यार का भी पॉइंट है। आपस में वो अलग प्रकार का पॉइंट है, उसमें दोनों है, एक है ब्राह्मण आत्माओं के बीच आपसी प्यार, कोई घृणा नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, और दूसरा है ड्रामा के किसी एक्टर के प्रति, एक एक्टर को दूसरे एक्टर से घृणा नहीं हो सकती, सब एक्टर से किसी से भी घृणा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको, क्योंकि एक वरदान था ना तुमको ना, तुम्हारा स्वभाव ही है मास्टर प्रेम का सागर, जैसे बाप प्रेम का सागर है और बाप ने अपने प्रेम से तुम्हें अपना बनाया, वैसे तुम अपने प्रेम के सागर के स्वरूप से उनको परिवर्तन करो। कितना ऊंचा समान है ये, परिवर्तन अपना बनाने की गलती मत कर देना, नहीं तो तुमने फंस जाएगी। किसी को अपना मत बनाओ, बाप का बनाओ। शीतल कर्मेंद्रिया एकदम शीतल, उत्तेजना जो है ना कर्मेंद्रियों में, उत्तेजना है इसमें सब में, ये एकदम शांत हो जाए, बिल्कुल फील हो जाए। नहीं अभी से प्रयत्न करना है। और क्या बोला, धारणा की पॉइंट, वरदान बोलो,
हर सेकंड हर संकल्प का
वरदान, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रॉपर्टी,
ब्राह्मण जीवन बाप का वर्षा, बाप का वर्षा या प्रॉपर्टी है संतुष्टता, और ब्राह्मण पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। कितना सुंदर बात बोली है, प्रॉपर्टी संतुष्टता, संतुष्टता प्रॉपर्टी या वर्षा है संतुष्टता, और पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। और
ऐसे
विशेष आत्मा, ऐसी विशेष आत्मा है। फिर वो हिम्मत के बारे में था, फिर वो समय के बारे में था, अब नहीं तो कब नहीं, ये भी था ना, जो कुछ करना है अभी करना है। माया को तुम चैलेंज करते हो, तुमने हिम्मत रखी है, निर्बल से बलवान बन गए, समर्थ हो, व्यर्थ समर्थ आत्मा बन जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, समय गवाएंगे नहीं। सबसे पहले तो टाइम हमारा ज्ञान योग के अतिरिक्त कहीं नहीं जाना चाहिए, सेवा सेवा में भी जैसे वो समाया हुआ हो, पर ज्ञान योग के अतिरिक्त अगर कहाँ कहाँ टाइम जाता है उसकी एक लिस्ट बनानी, कि यहाँ इससे बात करने में, उससे बात करने में, यहाँ घूमने में, वहां घूमने में, ये सब स्टॉप कर देना है। जैसे कोई स्ट्रेस आ जाए कि बस इसके अतिरिक्त अभी कुछ नहीं करना है, जैसे कोई स्टूडेंट है उसकी एग्जाम सामने है, उसके गांव में क्रिकेट मैच आ रही है फिर भी वो देखने नहीं जाता है, उसको क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है क्योंकि त्याग अपने आप हो जाता है,
गांव गया वो स्टेडियम के पास ही अगर कुछ पढ़ रहा है ना, तो नहीं देखेगा,
हाँ उसको इंटरेस्ट ही नहीं, वो ऑटोमेटिक वैराग आ जाता है हर चीज से। तो ऐसे समझो कि हमको हमारी प्यूरिटी की लेवल बहुत ऊपर उठा देनी है, हमारी स्थिति की लेवल बहुत ऊपर उठा देनी है, एक एक संकल्प, अभी अभी भी संकल्पों में अपवित्रता के संकल्प है, अभी भी व्यर्थ है, अभी भी वेस्ट है, निगेटिव है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म चलता है थोड़ा थोड़ा, उसको समाप्त करना है बस, दृढ़ संकल्प से। भक्त अपने व्रत को नहीं तोड़ते कभी, एक वो था ना सच्चे भक्त दृढ़ संकल्प ही व्रत है, सच्चे भक्त तोड़ते नहीं। तो हमको भी व्रत लेने हैं कुछ कुछ, जैसे छोटे छोटे व्रत, किसी से बहस नहीं करेंगे, किसी से डिबेट नहीं करेंगे, कोई भी सेवा को ना नहीं करेंगे, छोटे छोटे संकल्प है ये, पर शॉर्ट शॉर्ट। एक है लक्ष्मी नारायण बनना, वो लक्ष्य अलग है, एक है छोटा लक्ष्य, एक मास, एक मास का क्या लक्ष्य है, इस एक मास में अमृत वेले के बारे में, मुरली के बारे में, मुरली के चिंतन के बारे में, व्यवहार के बारे में, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। बार बार अगर झगड़ा होता है किसी
का, नहीं करेंगे झगड़ा होगा।
हाँ, बाबा ने उसी मुरली में कहा ना चुप रहना है, जोर से नहीं बोलना है, कड़वे नहीं बोलना है, उसी मुरली में था साइलेंस। साइलेंस में ही बहुत पावर है। मैक्सिमम देखा जाए ना सारे दिन भर की जो शक्ति है ना बोलने में ज्यादा वेस्ट होती है हमारी, अगर रोक दिया जाए तो ऑटोमेटिक पावर बढ़ जाती
है। उतनी नहीं जाएगी,
नहीं हो जाती है। हर दिन ऐसा अनुभव हो कि मेरे अंदर बहुत शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो कि मेरी जो आध्यात्मिक पावर है वो बढ़ रही है धीरे 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 हर दिन,
कमरे से बाहर जा रही
है। हाँ, मतलब ऐसा बहुत सूक्ष्म और अनुभव होता है ऐसा, कहीं पर भी हमारी शक्ति ना जाए, संकल्प भी ऐसे आए, नींद भी, आज तो नींद के लिए भी बोला ना, तो ऐसे मतलब मीठी नींद, पावरफुल नींद में भी जैसे कि एकदम कोई विकार का संकल्प नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कुछ नहीं, ये तब होगा। सारे दिन भर हमारा ध्यान रखे, दिन भर किसी की देह की तरफ बुद्धि नहीं जाए, सबसे ज्यादा ध्यान काम के ऊपर रखना है, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। मैंने ये देखा है, बस किसी की भी देह की तरफ बुद्धि को टिकाना नहीं है, देखा बस दिखी और गई, उसके ऊपर वापस उसको देखने की इच्छा नहीं,
देखने से कट
चढ़ता है। कितना महावाक्य है इसको, याद रख लो इसको, हमेशा के लिए याद रख लो, ये जो है ना महावाक्य बाबा का। चलो आज की मुरली
एक और स्लोगन था ना, सन्यासी वह जिनके संकल्प और बोल
नहीं, सन्यासी नहीं ब्रह्मचारी, तो बाप दादा मस्तक में क्या देखते हैं, चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ हीरा देखते हैं। इस चमक से क्या हो रहा है, कैसी चमक है, न्यारी और प्यारी चमक है, न्यारी चमक है और प्यारी, न्यारी अर्थात ये न्यारा जो शब्द है ना, ये चिंतन का सब्जेक्ट है मुझे लगता है, न्यारा शब्द पे चिंतन करो, न्यारा अर्थात क्या,
न्यारा
न्यारा न्यारा न्यारा शब्द क्या, न्यारा मतलब किसको न्यारा कर, न्यारा मतलब जो सबसे डिटैच, एक न्यारा अर्थात यूनिक,
सबसे अलग,
यूनिक
अलग,
एकदम अलग, किसी के प्रभाव से परे न्यारा है, किसी के लगाव में नहीं। हम कहते हैं ना ये लड़का, ये व्यक्ति बहुत ही न्यारा है, एक होता है डिटैच्ड, एक होता है किसी के अनअफेक्टेड, कोई रिएक्शन नहीं, कोई किसी बात का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
अद्वितीय,
हाँ अद्वितीय अद्भुत टाइप का, ऐसे टाइप की ये पर्सनैलिटी, न्यारी, प्यारा शब्द तो पता है हमको, पर न्यारा है। तो बाबा सब आत्माओं को न्यारी और प्यारी देख रहे हैं, सब आत्माएं भ्रुकुटी पर चमकती हुई, तकदीर का क्या 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 बोला आगे,
चमकता हीरा और तकदीर की लकीरें,
लकीरें स्पष्ट तो दिखाई दे रही है बाबा को, प्रत्यक्ष करने वाली है तकदीर की लकीर।
फिर आगे
बाप को नाज है, किस बात पर, कि बिछड़े हुए बच्चे क्या कर रहे हैं, गुप्त और प्रत्यक्ष पुरुषार्थ कर रहे
हैं,
और जो तीव्र पुरुषार्थ है, जो तीव्र पुरुष उन पे बाप बलिहार जाते हैं। फिर उदाहरण एक, कौन सा उदाहरण, गले का हार, अभी हर पैराग्राफ में एक 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 उदाहरण, गले का हार जैसा पहनते वैसे तुम, बाप तुम्हारे गले का हार है, अभी गले का हार का अर्थ मन बुद्धि में, मुख में और नैनों में बाप समाया हुआ है, ये तीन में
सब कर्मेंद्रियों में
बाप समाया, अभी बुद्धि में बाप समाया हुआ हो, मुख में बाप समाया हुआ, नैनों में बाप समाया हुआ, इसका अर्थ है कि बाप तुम्हारे गले का हार है।
उमंग,
फिर आगे है, फिर बाबा ने हरेक में क्या देखा, बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग देखा, बिना बच्चों के बाप प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, कितना सुंदर वाक्य है, तो कितने महान ठहरे तुम,
होना नहीं चाहता
हो सकता है
ऐसा नशा सदा रहता है।
तो तुम बाप को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो तो कितने श्रेष्ठ ठहरे, कितने श्रेष्ठ ठहरे कि तुम, तुम्हारे बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं होता,
नहीं हो सकता, तुम ही कर रहे हो।
हाँ, वो पहला पैराग्राफ तो ऐसा ही रहता है कोई भी मुरली का, समान रहते तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो,
फिर उसके बाद
फिर पता चलता है लेकिन लेकिन करना बाकी है। अभी भी मेजोरिटी के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाद में ये सब आता है। टीचिंग ही इज द बेस्ट टीचर,
पहले दिखाते तुम ऐसा हो,
नहीं
ये सोचता है कि अपने के बैकग्राउंड ऐसा हो, ये गैप है, ये माना देखते हैं
एक है, अगर एक वो अगर बोले अरे तुम क्या पढ़ोगे, तुमको कुछ आता है क्या, ऐसा नहीं, उसकी मेथड कैसी है, वो समान में स्थित करा देता है। अरे तुम तो बहुत महान हो, तुमने तो कितनी बार ये किया है, ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, फिर बताते हैं कि अभी भी तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है, अभी ठीक करो इसको। वो बाद में बताएगा, पहले नहीं बताता, पहले बहुत ऊंचे हो तुम, ये हो तुम, वो हो तुम, ऐसे हो तुम, विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, पूर्वज हो तुम, बिना तुम्हारे तो संसार जैसा वीरानी छाई हुई है।
इट इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, माना जो बाकी बातें जो बोलेगा उसका उत्तर है पहला पहला।
बाबा समान में टीचर है ना, ये वंडरफुल टीचर है, ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। और वो किसको पढ़ाने आया है, ब्राह्मणों को। अगर सपोज इसको हटा दिया किसी और को, तो ये जो ब्राह्मण इतने पावरफुल बैठे उनको कोई दूसरा पढ़ा सकता है, उसको वो पढ़ाना चालू कर देंगे, ब्राह्मण ही कुल इतने पावरफुल है सारे, है कि नहीं, कोई दूसरा पढ़ा सकता है, ये है करके चुप बैठते हैं, कोई दूसरे को बिठाओ वहां पर हाल खराब कर देंगे।
इतने बिगड़े हैं कि स्वयं भगवान को पढ़ने
नहीं, हॉल के अंदर एक बाबा और इतनी पब्लिक, तो बाबा के कारण ही तो कंट्रोल है ना, बाबा नहीं होता है तो कौन सा
पावर,
नहीं
पता नहीं करता। हाँ, आपने ये भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि दादियों की पावर कम है, पर बाबा जब चला गया अचानक, कभी कभी अचानक सभा में कैसी एक हलचल टाइप का हो जाता है, जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक ही बोल रहा है स्पीकर, जैसे वो बीच में चला गया फिर आ गया भले थोड़े देर बाद, पर वो पीरियड में देखा तो एकदम जैसे
बाबा की उपस्थिति का ही इतना कंट्रोल है।
हाँ,
जबरदस्त।
फिर आगे बाबा ने बोला ये जैसे कि तुम इसी जैसे बाप अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, प्राप्तिया अविनाशी है, वैसे स्मृति और ये नशा अविनाशी है,
आत्मा अविनाशी,
संगम युग की प्राप्ति अविनाशी, बाप अविनाशी, आत्मा ये सब अविनाशी है, वैसे ही यह स्मृति कि हम बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ये स्मृति, ये नशा अविनाशी है,
स्मृति और नशा।
हाँ, ये स्मृति और ये दोनों नशा अविनाशी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अगर इसको मंत्र कहा बाबा ने, अगर मंत्र याद है, याद नहीं है तो अंतर पड़ जाता है, अगर मंत्र याद है तो अंतर नहीं पड़ेगा। फिर आगे की मुरली सारी किस पे है, वो सेवाओं के बारे में, दिल्ली में इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि क्या किया, हल चलाया, जैसे ये हलचल में लाया, इस कॉन्फ्रेंस के कारण ब्राह्मण भी हलचल में आ गए, और जैसे उदाहरण दिया नींद का, जो अज्ञानी आत्मा है दिल्ली की, उनके लिए क्या कहा, अगर कोई नींद में है उसको उठाया तो क्या कहता है, कौन है, क्या है, तो वैसे तुमने भी उनको उठाया तो वो कहते कौन है, क्या है, कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था, ऐसी माता है, ऐसी कन्या है, इन्होंने क्या कर दिया, ऐसी इतनी बड़ी सेवा, इतनी गुप्त सेना खड़ी कर दी, कभी सोचा नहीं था, ये तो ये ऐसा सोचते उसके लिए,
तो कोई शक्ति है,
कोई शक्ति है, कोई ताकत है, साधारण शक्तियां नहीं है, ऐसे कहा उनके लिए। तो बाबा ने यहाँ पे और एक फिर उदाहरण दिया, कौन सा, यहाँ पे उदाहरण नहीं है, यहाँ नहीं उधर, हाँ वो नींद का ऊपर हो गया। फिर बाबा ने यहाँ पे कहा कि जड़ से नहीं, वो आ गया यहाँ पे, जैसे हल चलाते हैं ना, हल चलाते हैं तो बीज डालते हैं, तो तुमने भी ये बीज डाला, हल चलाते चलाते बीज डालते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे हलचल में लाया, अभी तो सिर्फ हलचल में लाया है, पर हलचल में चलाते चलाते बीज डाला, और ये जो बीज डाला है इसका बाप की याद और शक्ति इसको फलीभूत करेगी, वाणी और याद की शक्ति इस बीज को फलीभूत करेगी आगे चलकर। किधर किधर से बाबा ने, फिर ये पूरा हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद में थर्ड आगे, फिर वो विदेशियों को खाना, ये सेरेमनी को उनके अपने जन्म जन्म के भाग्य, अपने जन्म जन्म के राज्य के अधिकारी बनने की फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी है। इतना बड़ा वाक्य है ये जो हुआ, ये क्या है, अपने जन्म जन्म के फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी है।
लंबा सेंटेंस
है, बहुत ही लंबा,
फिर पढ़ने के बाद तो
गुम हो जाता है। बाबा की मुरली में उसमें ना तो फुल स्टॉप है, वो जो बोले जा रहा है टुक 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 टुक, पता ही नहीं कहाँ, ऊपर से जब चालू किया नीचे पहुंचे पता नहीं कहाँ चालू हुआ था, किस बात से चालू हुआ था, शाम
तो बोली नहीं कि भाई ऊपर क्या बोल कर,
वो लिंक है, इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। फिर बीच में खांसी आ गई, फिर उसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं, आजियान कर रहे हैं, आजियान मतलब वेलकम, आह्वान या अवगत, हाँ मतलब वेलकम कर रहे हैं। बहुत मेहनत की है वो उसके बारे में। फिर वो खांसी आई किसी को तो वो प्रकृति के बारे में, जैसा मौसम वैसे स्वयं के चला सकते हो कि नहीं, वो उसके लिए बाबा ने कहा। और फिर लास्ट पैराग्राफ है पूरा निरंतर सेवाधारी के ऊपर, निरंतर सेवाधारी की सारी परिभाषा है।
हाँ,
वो सारा तो निरंतर सेवाधारी की परिभाषा में, संकल्प में भी सेवा, हर कर्म में सेवा, फिर नींद के बारे में कहा कि तुम जब नींद करते हो उसमें भी सेवा समाई हो, नींद करते हो तो कैसा लगे, आनंद और सुख के वाइब्रेशन अनुभव हो किसी को, मीठी नींद। हाँ नहीं, योगी सोते हैं ना तो उसके चेहरे से ऐसा नजर आता है, देख के पता चलता है कोई योगी सो रहा है, तो वो उसके बारे में। फिर उसके बाद में बाप और सेवा, जैसे बाप अभी है, बाप के बिना जीवन नहीं है, वैसे सेवा के बिना जीवन नहीं, तो बाप और सेवा ये डबल लॉक हो, एक लॉक होगा तो माया को आने की मार्जिन है, डबल लॉक होगा तो माया नहीं आ सकती। हाँ, फिर अभी चार पांच प्रश्न है बाबा ने नीचे लास्ट में जो बोले ना, प्रश्न या कहो कि संपूर्ण सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी किसको कहेंगे, और एक वाक्य है कि निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी विघ्न विनाशक होते हैं, ये भी एक वाक्य है वहाँ पर। और फिर लास्ट में जो बोला है ना उसमें, एक तो संकल्प के बारे में, हर समय के बारे में, वृत्ति के बारे में, कर्मेंद्रिया के बारे में, कदम और कर्म, हर सेकंड में क्या हो, हर सेकंड में पावरफुल वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो, एक वृत्ति और सेकंड मतलब समय और वृत्ति हो गया, हर कर्म से दूसरों को कर्मयोगी का वरदान दो, वरदान देने वाले, हर कदम में पदम समाया हुआ हो, हर कर्मेंद्रियों से बाप की याद, बाप की याद, बाप की याद और सेवा, ऐसा कुछ
याद दिलाने की,
याद दिलाने की सेवा, हर कर्मेंद्रिय से याद दिलाने की सेवा। और लास्ट में है कि हर संकल्प में विश्व कल्याणकारी या लाइट हाउस माई हाउस का कर्तव्य करने वाले। देखो ये चार पूरा मुरली में ये जो लास्ट चार वाक्य हैं बहुत पावरफुल है। क्या क्या बोला है कि हर संकल्प कैसा हो, विश्व कल्याणकारी या लाइट हाउस, मैं कितनी ऊंची बात है, हर संकल्प एक, वृत्ति कैसी हो, वृत्ति में पावरफुल, एक सेकेंड में इतनी पावरफुल वृत्ति हो कि वायुमंडल को परिवर्तन कर दे, मना समय और वृत्ति, बाबा ने कहा ना चारों रीति से सेवा करनी है, उसको कहेंगे निरंतर सेवाधारी। तीसरा है हर कदम में पदम, हर कर्म से दूसरों को कर्मयोगी भाव का वरदान देने वाले,
हर कर्म,
हर कर्म से,
और हर कर्मेंद्रिया याद दिला,
हर कर्मेंद्रिया बाप की याद, दूसरों को बाप की याद दिलाए, मतलब ये चारों ही चारों पांचों बातें जो है ना बहुत सूक्ष्म भाषा है, किसकी, निरंतर सेवाधारी की, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, जिसके संकल्प, संकल्प समय, नींद, कर्मेंद्रिय, कदम, कर्म, वृत्ति, सब में सेवा समाई, चारों पांचों बातें मिला के,
कुछ करना नहीं है, बस यही करना,
ये है सहज राजयोग, बहुत आसान है अनिल भाई, है जो जंगल में जाते ना वो बहुत कठिन है, ये बहुत आसान है, ऐसा बाबा ने आज कहा, जंगल में जाना कठिन है, ये बहुत सहज है कि वो सबसे आसान है, और ये
मधुबन का बोला,
फिर ये यहाँ पूरा हुआ। फिर उसके बाद में मधुबन में जैसे संगठन है, मतलब मधुबन किसको कहेंगे उसकी, नहीं जैसे मधुबन में यहाँ मेला, वैसे आत्माओं का भी मेला लगेगा, भविष्यवाणी, बाबा की मुरलियों में हर चीज होती है, कोई ओपिनियन होता है, कोई राय देते हैं, कभी भविष्यवाणी करते हैं, साकार मुरली भी ऐसी होती है, हर चीज होती है उसमें, कभी सजेशन देते, देखो भाई जितना याद कर सकते करो, कभी ऑर्डिनेंस है, काम महाशत्रु है, कभी ऑर्डिनेंस निकलता है, कभी सजेशन होती है, कभी ऑर्डर होता है, कभी कोई भविष्यवाणी कर देते हैं अभी ऐसा हो रहा है ना वैसा होगा, कभी कंपैरिजन होता है सतयुग में ये तो अभी ये। फिर मधुबन के लिए क्या क्या कहा, मधुबन अर्थात जहाँ संगठन है वहाँ उसको मधुबन कहेंगे, और बाप का वायदा है मधुबन में ही आएंगे, तो मधुबन केवल यही नहीं है, जहाँ पर भी ब्राह्मणों का संगठन है वो मधुबन है। हाँ वो आगे नहीं, फिर और क्या बोला कि जैसे जहाँ अगर आप मधुबन बनाओगे जहाँ पर भी, तो बाप वहाँ हाजिर नाजिर है, फिर आगे ये कितना भी बनाओ आप, फिर भी बड़ा तो बड़ा है, बड़ा तो बड़ा ही है। जैसे उदाहरण दिया भक्त का, भक्त के घर में अच्छी सुंदर मूर्ति है फिर, और मंदिर में पुरानी मूर्ति है, फिर भी वो वहाँ जाता है। इसके लिए बाबा ने अपनी फुलवाड़ी बनाओ, मधुबन का नक्शा बनाओ, ये सारी बातें बोली ना, होता मिनी मधुबन बनाओ, चरित्र भूमि कर्म भूमि का अपना महत्व है। बड़ा बड़ा है, और एक वाक्य है, बड़ा बड़ा है छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है छोटा छोटा है, फिर भी इसका वो तो कम होने वाला है नहीं, चाहे हजार मधुबन बन जाए संसार में, ये कम नहीं होने वाला है। ये यहाँ पूरा हुआ दूसरी मुरली नहीं, फिर और एक है, बाबा थैंक्स देते हैं वर्तमान सेवा के लिए और भविष्य सेवा के लिए स्मृति दिलाते हैं, और बाबा की मीठी ममता है, मीठी नहीं शुभ ममता है, माँ की शुभ ममता है, जैसे माँ माँ का क्या वो प्रेम समा जाता है, तड़पते नहीं है समा, उदास नहीं होते, तड़पते नहीं है समा जाते हैं, इस तरह का कुछ बोला। बाबा का जो है वो है शुभ ममता, और तुम्हारा संसार से ममत्व निकाल दो, मेरा तो
ऐसे स्नेह में बांधने वाले,
वो भी याद किया आपने लास्ट वाला, ऐसे वाला वो तो सबसे मुश्किल होता है वो मैंने आज तक तो कभी याद नहीं किया। हाँ वही वही वो जो लास्ट चार लाइन रहती है ना, ऐसे ये करने वाले वो करने वाले वो करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ये सबसे डिफिकल्ट क्योंकि उसमें पूरा आठ पेज का सार होता है,
और वो अगर देखो गौर से तो किसी को भी याद प्यार नमस्ते मिलता ही नहीं, आउट हो जाते हैं सारे।
मुन्नी भाई बोलते अभी याद प्यार नमस्ते तो बाबा दूसरा ही बात।
चलो फिर उसके बाद में ये अभी और एक पावरफुल मुरली है, पार्टियों से मुलाकात, किस हम आर्टियों से क्या किस समान में मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। उदाहरण दिया जैसे हद के पोजीशन वाले उनको कितना स्मृति रहती है और नशा रहता है, वैसे तुमको भी नशा रहना चाहिए कि मैं महान आत्मा हूँ श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर आगे बोलो, नहीं नहीं उदाहरण दिए और बहुत सारे, ये इसमें बहुत सारे एक के बाद उदाहरण ही होंगे। हाँ नहीं वो आ गया, उसके पहले मुरली है किसके पास, उससे पहले एक बहुत अच्छा वाक्य आता है वहाँ पर, नहीं नहीं
जगह चित्र
हाँ वो हो गया उसके बाद, उसके बाद
कर्मयोगी अर्थात
हाँ यहाँ पे कर्मयोगी की परिभाषा पूरी चालू हुई, तो बाबा ने कहा कर्मयोगी किसको कहेंगे, कर्मयोगी अर्थात जिसके हर कर्म से बाप से संबंध और बाप का प्यार का आत्माओं को साक्षात्कार हो, कर्मयोगी अर्थात जिसके हर कर्म से संबंध बाप का स्नेह और बाप का संबंध जो है स्नेह उसका आत्माओं को साक्षात्कार हो। और आगे और एक जगह बोला है बाबा ने कि ये जो राजयोगी इसकी परिभाषा बहुत गुही है, कर्मयोगी अर्थात जिसके संकल्प में भी बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले हो, ये है कर्मयोगी जी। ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट डेफिनेशन कर्मयोगी, संकल्प में भी बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाए, एक और दूसरा कर्मयोगी अर्थात कि जिसके हर कर्म से बाप का स्नेह और बाप से संबंध आत्माओं को साक्षात्कार कराए, ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल होगा उनको। हाँ वही मतलब यही कर्मयोगी की परिभाषा बाबा ने दी ना। और फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे तुम्हारे जड़ चित्र भी क्या करते हैं सुख शांति का अनुभव कराते, तो तुम भी योग की शक्ति से, याद की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से, अपनी शक्ति से आत्माओं को अनुभव करो। उनको इतनी पावर नहीं है कि अनुभव करें, तुम उनको कराओ, किसका? सुख का, शांति का और शक्ति का अनुभव कराओ ऐसी आत्माओं को। ये तो बहुत ऊंचा काम है, पर वो जड़ कर सकते हो तो तुम चैतन्य नहीं कर सकते, तो तुम्हारे जड़ चित्र कर रहे हैं, करा रहे हैं अनुभव लोगों को,
तुमने किया है,
तुमने किया है। हम तो कर ही करा ही सकते हैं आत्माओं को, और अलग अलग शब्द बोले, कभी बोला साइलेंस की शक्ति से, कभी बोला याद के आधार से, प्राप्ति के आधार से अनुभव कराओ, योग की करते, फिर उसके बाद में जैसे वो साइंस की यंत्र है वो इस तरह से अनुभव कराते, ठंडी गर्मी, वैसे तुम भी आत्माओं को सुख शांति और शक्ति का अनुभव करो। एयर कंडीशन का भी एक उदाहरण दिया, दूसरा और एक उदाहरण दिया कि एक सेकंड में अंधकार से प्रकाश रोशनी हो जाती है, वैसे तुम भी उनको अनुभव कराओ। मतलब इसमें ये सारे उदाहरण दिए बाबा ने, ये है
वास्तविक
परिभाषा आएगी, राजयोग कहो कर्मयोग कहो, ये उसकी परिभाषा है। हाँ जी, और थोड़ा सा बाकी है, और भी कोई बात? हाँ, अभी दूसरा पैराग्राफ है खुश, तो खुशी का आधार बाबा शब्द, बाबा शब्द ही आधार है, स्विच है बाबा ने कहा, स्विच दबाओ तो जैसे अंधकार से रोशनी हो जाती है, वैसे ये स्विच दबाओ तो तुरंत खुशी हाजिर, जो चाहे वो हाजिर, जो चाहे वो ले सकती है, जादू मंत्र है ये, सेकंड में भाग जाता है ये जादू मंत्र है, जैसे जो चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, वो सब अनुभव हो जाता है। तो बाबा ने फिर बाबा दादा की आश भी बताई ना, बाप की आश है सब बाप समान बने, फिर और जिम्मेदारी के बारे में विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ, विधि पूर्वक इस मंत्र को कार्य में लगाओ। तो यहाँ ये मुरली पूरी हुई,
जादू
मंत्र, फिर लास्ट में एक पैराग्राफ है बाप दादा की, बाप दादा देखना चाहते सब बाप समान बने, सेवाधारी बने, हद की जिम्मेवारी, बेहद की जिम्मेवारी, हाँ वही वही, उसी में लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा है और एक, और फिर वो जंगल में जाना मुश्किल है,
कठिन
नहीं है,
बोला
वरदान स्लोगन। वरदान में एक ही बात मुझे अच्छी लगी कि जितनी सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो खींच के लेके जाएगी प्राप्तियों से दूर,
प्राप्ति
से अप्राप्ति की तरफ ले जाएगी, तो लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन उसमें वो ही बहुत पावरफुल लाइन है, जितनी सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो खींच के लेके जाएगी उधर,
की इच्छाओं को छोड़ो,
छोड़ दो,
सदा प्रसन्न
चित रहे।
और एक पॉइंट बोला था ना बाबा ने, जितना जितना बाबा से प्यार उतना बाबा की सेवा से भी,
हाँ, बाप और सेवा, बाप और सेवा, तो जैसे बाप से प्यार है वैसा
डबल लॉक वहाँ पर था ना,
डबल लॉक के बारे में पॉइंट थे,
बोला
आधी
उम्र के बाद बच्चा
पैदा होगा, अच्छा वो 75 उम्र के बाद तो पहला बच्चा होगा, फिर दूसरी बच्ची होगी 8-10 साल के बाद, और दूसरी मुरली में कहा कि केवल बच्चा होगा, बच्ची नहीं होगी, मतलब केवल बच्चा होगा 1-2-3 दिन के बाद, उसी के बाद ये बाबा कुछ कुछ भविष्य के बारे में बताते हैं, कुछ कुछ भविष्यवाणियां करते हैं, कभी कभी कंपैरिजन करते हैं। मुरली को इस रीति से लेना, मुरली याद करनी है ना, अभी मुरली सुन लिया, सुनने के बाद उसको ऐसे देखो कि सतयुग के बारे में क्या कहा, त्रेता के बारे में क्या कहा, भक्ति के बारे में क्या कहा, माया के बारे में क्या कहा, संगम के बारे में क्या, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, धारणा की कोई पॉइंट है क्या आज की मुरली में, इस तरह से अलग अलग रीति से उसको थोड़ा मनन करने के लिए, याद करना लक्ष्य नहीं है, मनन करते करते वो समा जाती है, अगर कोई याद करने की कोशिश करें तो भूल जाएगा टाइम पर,
नहीं फिर वो लिंक करता है, मतलब वो मौके पे याद, जैसे मारे हाँ, तो याद है कि इस मुरली में ही
हो रहा, हाँ तो इस तरह से ना उसको, मतलब मुरली को इस तरह से लेना है कि जैसे बहुत उसको डीप में उसके जाके हम पढ़ रहे हैं, केवल सुनना तो मुझे थोड़ा सा सुन लिया वो ठीक है, पर सुनने से ज्यादा पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, सुनना से ज्यादा पढ़ना कई कई गुना ज्यादा है, और पढ़ने से कई कई गुना ज्यादा है मनन। थोड़ा सा वाक्य देखो, इसके लिए क्या करो, थोड़ा सा पढ़ो, ऐसा भी लक्ष्य नहीं रखो, मुरली कोई भी लेता है तो क्या करता है, लक्ष्य क्या होता है, फटाफट खत्म करनी है, यही लक्ष्य रहता है ना मुरली पढ़ते समय, चार पहले देख लेते कितना पेज है आज की मुरली, चार पेज है, अरे बाप रे, ठीक है, तो पहला हमारा लक्ष्य, हाँ मतलब वही, हम क्या कैसे पढ़ते हैं उसको, हमको इसको खत्म करना है, माना अंतर मन में समाया रहता है,
आठवें तो पूरी करनी पड़ेगी,
हाँ बस क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना है ना,
मुरली सुनने वाले सुनते भी है ना, तो क्या कम समय में जो खत्म हुई हो ना वो मुरली ढूंढते हैं।
और अगर उसमें बहुत ज्यादा ये कहानियां ये वो रहा ना तो और बुद्धि भटकती है इसको बहुत कौन। और जो मैंने देखा सेंटरों पे जो भी बहुत सारी बहनें जो सुनाती है ना वो अपना बहुत सारा विचार मंथन उसमें ऐड कर देती है, मतलब जो मुरली में नहीं है वो भाव को भी बदल देती है बहुत सारी, वो है नहीं वो कुछ और ही बताती है। मतलब इसके लिए सबसे बेस्ट है सबको छोड़ो खुद स्टडी करो, खुद बाबा के क्या महावाक्य है उसको समझने की खुद कोशिश करो, क्योंकि जो भी सुनाता है ना वो अपना थोड़ा थोड़ा डाल ही देता है उसमें, और वो बाबा के भाव से थोड़ा अलग होता है भिन्न, उसको वो उतना ही सुनाता है जिसको जिसको जितना समझा उसको। अभी किसने कितना उसका स्टडी किया है मुझे बताओ, मुरली का स्टडी एकांत में ही करना, एकांतवासी बाबा ने उस दिन बोला ना कोई भी एक स्थिति में स्थित होना, मतलब मुरली की कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसमें स्थित होने की अभ्यास करो, बहुत मेहनत का काम है इसमें ना, कभी कभी थोड़ा योग भी छोड़ना पड़ेगा पर योग का आकर्षण भी बहुत ज्यादा है। हाँ तो ये बात है, वही बोल रहा हूँ, तो इसके लिए हमको टाइम निकालना पड़ेगा,
जो हम बोल रहे हैं सारे दिन में
एक दो घंटा डेली मुरली चिंतन के लिए चाहिए, दो घंटा आउट ऑफ ऑल द बिजी शेड्यूल, दो घंटा डेढ़ घंटा ले लो केवल चिंतन के लिए, खत्म करने के लिए लक्ष्य नहीं है पढ़ के फटाफट खत्म कर दिया आगे क्या कुछ नहीं गया।
हाँ सुबह 10 बजे तक अगर आपने एक बार स्टडी की थी नहीं की फिर होता,
और टाइम मुरली का स्टडी करने का टाइम खाली सुबह का है,
फिर होता ही नहीं,
शाम में नहीं होता है, शाम में तो बुद्धि उसमें चिंतन ही नहीं कर पाते, मुश्किल है सुबह
का ही टाइम थी।
और अपनी सेवा में जाने से भी पहले वो सबसे बेस्ट है।
देखा सुबह सुबह जैसे ही आप जो याद पहले आते हैं ना उसमें अगर 15-20 मिनट किसी को मिलता है उसमें कुछ कर लेते हैं ना, वो मैंने देखा।
मैं मेरा पर्सनल बताऊं तो 7 बजे के अंदर मुझे लगता है वो मुरली पर मेरा कंप्लीट चिंतन खत्म हो जाता है फुल, जिसको कहेंगे मास्टरी
हो चुकी होती है,
हो चुकी 7 बजे तक फुल कंप्लीट मास्टरी इन द सेंस, अगर उसमें कोई नया शब्द आया तो उसके बारे में पूरा डिटेल, अगर उसमें कोई नई बात आई तो उसके बारे में उसको बाजू में करके उसके बारे में सर्च करके ढूंढ के वो क्या है पूरा, इसके लिए मुझे निश्चिंतता रहती है दिन भर।
हाँ भाई आज हमने ये
हो गया पूरा जो चिंतन
का सबसे बड़ा साधन है मुरली को पहले,
सबसे बेस्ट टाइम है मुरली चिंतन का 5 बजे से 7 बजे के बीच में,
5 से 7
का टाइम जो है ना ब्राह्मण आत्मा है नींद में घूमने फिरने में इसमें उसमें घुमाते ये सब नहीं है, हेल्थ बनाना खाली लक्ष्य नहीं है, 5 और 7 के बीच का जो टाइम है उसको अगर सफल कर लिया जाए देरी की मुरली की स्टडी में, उसमें ऐसा कोई एक पॉइंट आ जाएगा पावरफुल पॉइंट एक, वो अलग से लिख के और फिर सारे दिन भर में देखते रहो उसको, पर बाय बिफोर 7 o'clock वो मुरली का फुल मास्टरी हो जाए तो बहुत मतलब अंदर पावर रहती है। चाहे दिन भर में हमारा तो मेरा तो बहुत सारे हलचल वाला है सर हलचल से कुछ नहीं होता है, कुछ भी होने दो हलचल है बहुत भयंकर हलचल है
दिखती है मुझे
बहुत जमने वाली वाला काम
बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा जिसको खुद खुद की ये नहीं कर रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रियली है
रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये मेजर डिपार्टमेंट है ना उसका
सबसे ज्यादा पेशेंट
तो मतलब इस तरह से, पर वो से मैं अलग हूँ
अलग ही है,
ये ऊपर चल रहा है कुछ अंदर कुछ भी नहीं है खाली मतलब उसका उधर कोई असर ही नहीं है जैसे, इसके लिए वो जो इस सबका आधार मैं समझता हूँ ना एक तो अमृत वेला है और सुबह का चिंतन जो 7 बजे तक का जो चिंतन है वो इतना मतलब उसमें आत्मा में पावर बढ़ जाती है, और मैं कहूंगा यही टाइम है सब लोगों ने इसी टाइम पे चिंतन करना है, कमरे में बैठकर नहीं सबसे पहले
खुले
निसर्ग के सानिध्य में ही चिंतन किया जा सकता है, कमरे में चिंतन नहीं हो सकता है, निसर्ग के साथ चलते चलते करो। कई लोग सुनते हैं चलते चलते मुरली, अभी वो सुनना भी कैसा है पूरा एक बार चालू कर दिया और पूरा खत्म कर लिया सुन लिया ऐसा नहीं, सुना बीच में स्टॉप करो फिर मोबाइल को, फिर थोड़ा चलो फिर स्टॉप करो फिर चलो, केवल दौड़ नहीं लगाना मुरली सुनते सुनते भागो,
कराते भर ले हो
सुनते भागे ना तो बीच बीच में उसको स्टॉप करना। अगर बीच बीच में वाक्य आया कोई स्टॉप करो और फिर थोड़ा देर चलो, फिर सोचो उसके बाद क्या सुना और फिर वापस चालू करो, वापस बंद वापस चलो, वापस बंद वापस चलो। वो पूरा नक्की का एक राउंड होने तक आपकी पूरी मुरली हो जानी चाहिए। चिंतन सुनना नहीं खाली, मास्टरी, मास्टरी अर्थात पावर बन जाए वो। और शुरुआत करो, मैं मुरली का शुरुआत पढ़ना चालू करता हूँ वरदान से,
पहले
फर्स्ट पहले हाँ। मुरली की पढ़ने की शुरू, प्रश्न उत्तर तो बहुत कम पढ़ता हूँ मैं, महावाक्य भी तो खाली वरदान जो है उसका सीधा अंदर का वो पढ़ो, स्लोगन पढ़ो, देन मुरली स्टार्ट करो। तो पावर भरनी है उससे बस। ये मुरली बहुत जबरदस्त चीज है, ऐसी है मुरली जो चलाते हैं ना, एक मुरली है 83 की मुरली है, उसमें क्या बाला बाबा ने कहा, मुरली जब चलती है तो सांप जो होता है ना वो भी वश में हो जाता है
उसका।
वो सवेरा मुरली चलाता है ना, तो तुम भी ऐसे मुरलीधर हो जो किसी भी कड़वे स्वभाव को वश में कर सको, ऐसे बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो मुरली वो सवेरे वाली मुरली, सांप जो होता है ना वश में हो जाता है मुरलीधर के,
जहरीला होता है,
जहरीला होता है, वो मुरली के सामने शांत हो जाता है,
वो भील बजा
जाता है। तो यही है वो मुरली जिसमें विकार जो है, वासनाएं है, जन्म जन्म के काम विकार जो है, इच्छाएं है देह को टच करने की, देह को देखने की, वासनाएं जो है ना भोग की, ये धोती पहनने के लिए तो बाबा ने कहा बाप उनको अशुभ कहते हैं, देखते भी नहीं है उनको, अस्वच्छ है वो। ये सारी जो इच्छा है ना, टचिंग, ये सब, ये समाप्त हो जाए।
बाबा ने बोला उनको छूना नहीं चाहिए, अब तो पहले पूछना पड़ेगा बाकी कितने पहने।
बाकी पहनना ये जो है ना सुशील भाई, ये केवल एक्चुअल नहीं, संकल्प में भागी पहनना।
हाँ बिल्कुल, संकल्प की बात,
संकल्प की बातें चल रही है,
पहले संकल्प में ही आता है तभी ये शरीर से जाता है।
और वो किसके लिए, अभी बाहर की स्त्रिया छोड़ दो, ब्रह्मा कुमारी,
क्योंकि वो चीजों को छोड़ा है तो संकल्प में तो अंदर ऑलरेडी फीड है ही है।
हाँ इसके लिए इसमें दुखी नहीं होना कि अभी भी संकल्प आ रहा है, क्योंकि जन्म जन्म भोग भोग है, तो जन्म जन्म के भोग के संस्कार अभी भी है। अभी उसको तुरंत आप बोलोगे कैंसल तो नहीं होता है, तुरंत बोलोगे नहीं तो वो नहीं होता है। विदेश में एक 5 मिनट, विदेश में एक फ्लैगिस्ट करके सन्यासी लोग है, वो फ्लैगिस्ट जो होते थे ना क्या करते, जब भी मन में काम वासना तो अपने आप को चाबुक से मारते थे, ये उन्होंने चालू किया। काम वासना उत्पन्न हुई, चाबुक लिया और मारा अपने को 10 बार।
कौन लोग थे?
फ्लैगिस्ट कहते हैं उनको, एक प्रकार के सन्यासियों का ग्रुप है।
अच्छा।
तो उन्होंने ऐसा चालू किया, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि खुद को मारने लगे ना, और जब बहुत मार लेते थे ना तो मारने के बाद वासनाएं चालू हो गई और उत्पन्न होना चालू हो गई। पहले किस लिए चालू किया कि बंद हो जाए, खुद को सजा देने के लिए। पर बाद में ऐसा अनुभव हुआ उनको कि जितना ज्यादा मारेंगे उतना और ज्यादा वासनाएं उत्पन्न होगी। तो ये मार्ग नहीं है, वासनाओं को जीतने के लिए उनको समझना पड़ेगा। इंक की बॉटल है, उसका इंक खत्म हो गया, अभी उसको धोना है, तो मेथड क्या है, पानी के पास रखना पड़ेगा, तो पानी उसमें जाएगा, पहले इंक निकलेगी, खराब खराब निकलेगा, निकलने दो। जब प्रोसेस चालू करेंगे ना पुरुषार्थ का कि अभी मुझे काम को जीतना है, वो तुरंत नहीं जीता जा सकता, कम किया जा सकता है, तो पहले पहले गंदा निकलेगा, फिर पानी निकलेगा, फिर स्वच्छ होगा। तो मन भी ऐसा है, उसमें जन्म जन्म की वासनाएं भरी पड़ी है, तो नहीं जाएगी तुरंत, बहुत बहुत उसको पीछे से अटैक करना है। सामने से अटैक करने जाते हैं ना तो उनको खत्म करते हैं, मार देता है,
फिर अंदर ही अंदर काटता
है, फिर दुख होता है, फिर ये होता है कि अरे देखो वापस अभी भी हो रहा है, इतना इतना समय के बाद भी वासनाएं समाप्त नहीं हुई, और दिल शिकस्त होते हैं। इसके लिए बहुत उसको टैकल करना है ना, बहुत समझो उसको क्या है, उसको ये नहीं करो, उसको मारने की कोशिश नहीं करो, उसको समझो क्या है, धीरे धीरे समझाओ उसको, उसको फिर
तो उसका थोड़ा चेंज करे तो हाँ। तरफ हम ज्यादा चिंता,
नदी को रोकने की कोशिश नहीं कर किया जाती है, नदी अपना प्रवाह बदलती है, उसको मोड़ा जाता है खाली।
तो आत्मा
का नदी को कुछ रोकोगे ना आप, अगर जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है 50 साल से, उसको बोला स्मोकिंग छोड़ दे आज से, पागल हो जाता है 4 दिन के बाद, वो विड्रॉल सिम्टम, क्योंकि काम वासना है, सेक्सुअल एनर्जी ऐसी है, उसको अगर रोक दिया जाए तो वो कहीं कहीं और भागती है, इतनी पावर है उसमें, इतनी पावर है कि आदमी रोक नहीं पाता है उसको। ये जो इतने विकर्म हो रहे हैं संसार में, आश्चर्य नहीं लगता है क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्सुअल एनर्जी है। वो ऐसी एनर्जी है कि जैसे नदी है ना, एकदम फोर्स के साथ बहती है, उसको आप रोकोगे और इधर उधर जाएगी वो, उसको मोड़ मोड़ के सब्लिमेशन करना है, उसको खत्म नहीं करो, उसको दिशा मोड़ दो उसकी। वो जो कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, मतलब क्या, जो काम शक्ति नीचे बैठी हुई है उसको ओजस शक्ति में परिवर्तन करो, वो यहाँ से नीचे से उठ के ऊपर जाएगी ईड़ा पीड़ा नली से और इधर सहस्त्रधार हो, मतलब ओजस में कन्वर्ट करना है उसको, उसको रोकना नहीं है, रोकी नहीं जा सकती क्योंकि वीर्य में इतनी शक्ति है कि उसके किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस वीर्य से। वो वीर्य जो शक्ति है ना, सबसे पावरफुल शक्ति है। एक समान ऐसा है कि मैं वीर्यवान आत्मा हूं, वीर्य जो बाहर जा रहा है उसको रोकना और उसको परिणित करना और उसको ऊपर की ओर लेके जाना। इधर वो नीचे की ओर जब जाएगा ना तो शक्तियां नष्ट होगी। कोई 10 साल तपस्या किया, एक बार उसका वीर्य पाठ हुआ तो शक्तियां कम। ये ब्रह्मचर्य की कोई परिभाषा है, खत्म हो जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा काम केवल काम पर ही करना है,
काम पर ही काम करो।
ये क्रोध और ये लोभ और ये जो है ना, ये तो चिल्लर है, कुछ नहीं है, फालतू है, मतलब ये बच्चू बादशाह को पकड़ लो बस, तो सारी प्रजा जो है ना बच्चू बादशाह की, तीरु वजीर और वो सारे सब आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस प्यूरिटी पे, सबसे ज्यादा फोकस किसी भी देह की तरफ नहीं देखना। ब्रह्मा कुमारी बहन देखने की जरूरत नहीं है, काम से काम बस, देखा खत्म, वो चिंता नहीं कोई। क्योंकि ब्राह्मणों का संपर्क किससे आएगा, बहनों से, बाहर का छोड़ दो अभी, पर बाबा ने इसके लिए भी बोला हुआ है बहन भाई, ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई, ब्रह्मा कुमार समर्पित, इनमें भी लगाओ SMS मैसेज।
पहले की जो समर्पित मर्यादा है ना, वो तो बहुत
वही चाहिए था,
संहिता जो है ना,
हाँ, वही चाहिए, वही चाहिए,
पता लगता है क्या
वो चाहिए, उसके सिवा नहीं होता है। ये बार 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 बात करना, फैमिलियरिटी बढ़ाना, बाबा ने कहा, बाबा इसको कहते फैमिलियरिटी का नशा। किसी को कोई बहन बना देना, बहने तो सब है पर किसी को स्पेशल बहन बना देना, ये मेरी स्पेशल बहन है, किसी को माँ बना देना,
गिफ्ट लेन देन करना,
टोली, वो उसको टोली भेजेगी, वो उसको टोली भेजेगा, जरूरत नहीं है किसी भी। ये ब्राह्मण जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सब ये भटकने के मार्ग है बस। भले ऊपर से तो कुछ नहीं दिखता, सब अच्छा दिखता है, पर भटकती है बुद्धि, बहुत भयानक भटकती है।
सेवा के नाम से,
सेवा के नाम पर एक दूसरे से मिलना जरूरत नहीं,
आप मुझे बुला लो सेंटर में, मैं
किसी एक सेंटर पे जाना, बुलाना कुछ नहीं, ये संन्यास मार्ग है, सन्यासी जैसा रहना है, इधर फटे कपड़े और डाइट का। बाबा ने कहा एक ही चप्पल रहनी चाहिए तुम्हारे पास, लास्ट हफ्ते में था ना, जैसे शरीर की जूती एक है, चप्पल भी एक ही चाहिए। ब्रह्मा का सारा जीवन अभाव में गुजरा है, सारा जीवन ब्रह्मा का अभाव में गुजरा है। ब्रह्मा सबसे बड़ी सत्ता है, ब्रह्मा इस संसार की प्रजापिता है, वो संसार का, उसका जीवन अभाव में गुजरा है, उसके जीवन में गालियां दी है लोगों ने उसको,
वैसे उसी में सुख मिला, जब भूख लगी है नमक कितने कितने 1 रुपए लगी,
हाँ वो बाकी कितना भी दे दो,
वो तो
उससे भोग विलास को जब तक है योगी नहीं बना जा सकता, क्लियर कट है। बहुत ज्यादा खाने पीने की इच्छा है, योगी नहीं बना जा सकता। किसी से बात करने की, किसी से मिलने की, किसी की तारीफ करने की, ये बहुत अच्छा है, ये सब
वास्तव नहीं है,
किसी की जरूरत नहीं है, किसी बहन से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि कुमार बैठे हैं इसके लिए कोई कनेक्शन नहीं,
बिल्कुल सही बात है,
कोई कनेक्शन ही नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है, काम से काम, बात किया खलास,
जिसको काम होगा वो अपने आप
आएगा, खुद से किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी को मैसेज करने की, किसी को पहचान बढ़ाने की जरूरत नहीं, रिलेशनशिप बढ़ाने की जरूरत नहीं, किसी को स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं। आप आएंगे तो हम टोली देंगे, ये देंगे, वो देंगे, किसी को अलग से घुमाने की जरूरत नहीं है। सेवा के अर्थ देते हैं तो करो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो करना ही है,
वो अलग बात है,
पर एक है खुद से इंटरेस्ट दिखा के और स्पेशल लोगों को, ये सब चीज पर जरूरत नहीं है, सब 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 माया है,
काम पर काम करना,
एक ही काम करो, काम पर काम करो, काम तो जीतो,
काम पर काम करो, राम
मिलेगा, राम
मिलेगा,
राम के दिल में स्थान मिलेगा,
काम मिलेगा, खाली स्थान मिलेगा।
बाबा सारी मूल्या तो वही कहती है ना, काम महाशत्रु है, आदि मध्यम
दंडुक देता है, वही चाहिए भगवान को, प्योरिटी चाहिए
और कुछ नहीं चाहिए,
यही नहीं उसको।
देखो
क्रोधियों ने बाप को बुलाया, बाप पति तो नहीं बुलावे किससे आया है, क्रोधियों ने बुलाया। क्रोधी को कभी क्रोधी कभी मुंह काला करता है, क्रोधी को कभी पतित कहते हैं नहीं, क्रोधी को कभी पांचवी मंदिर से गिरने के लिए कहते हैं नहीं, क्रोध कभी आदि मध्यम से दुख देता है नहीं, काम ही आदि मध्यम से दुख देता है, काम ही पतित बनाता है। सारा बाबा का तो फोकस ही पवित्रता के ऊपर है, बस बाकी सब छोड़ दो, खाली प्यूरिटी, दैट्स इट। समान भी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
जीवन निकाल देना
पूरा जीवन, एक ही शक्तिशाली स्थिति कोई भी एक ले लो तो स्वयं का भी लाभ और दूसरों का भी लाभ। खाते समय मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, सोते समय परम पवित्र आत्मा हूँ, चलते समय परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की किरणें फैल रही है, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, पवित्रता का देवता हूँ, पवित्रता ही मेरे अंग अंग में समाई हुई है, सारे कर्मेंद्रियों में पवित्रता घुस गई है, मैं पवित्रता का सागर हूँ, पवित्रता ही मेरा, मेरी पवित्रता से विश्व आधार है, मेरी पवित्रता प्रकृति के लिए आधार है, मेरी पवित्रता, मेरी पवित्रता के आधार से सर संसार रुका हुआ है, अगर मेरी पवित्रता कम तो संसार गिर जाएगा, पत्तों की तरह ऐसे ऐसे लगा हुआ है, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गई पवित्रता की संसार गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे, कितना बोझ आ जाएगा सर के ऊपर। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग के बीच में सीमा रेखा है पवित्रता, और कोई रेखा नहीं है, क्रोध पवित्र रेखा नहीं है, वो स्वर्ग और नर्क की सीमा रेखा है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का आधार, इस यज्ञ में सबसे ज्यादा झगड़े हुए पवित्रता के कारण, क्रोध के कारण हुए, लोभ के कारण हुए, अहंकार के कारण हुए नहीं, सारे झगड़े पवित्रता के कारण, ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ सहन किया पवित्रता के कारण। ब्रह्मा बाबा को किसी ने कहा कि बाबा आप ये जो पवित्रता की बात है इसको निकाल दो, आप बहुत आ जाएंगे, बाबा ने कहा मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेर नहीं चाहिए, शेर चाहिए जो धाड़ से सारा विश्व हिल जाए, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए लाखों में, मुझे तीन चार भी मिल जाए ना तो काफी है, पवित्रता
ये
सारा सारा आधार पवित्रता है, बस सारा आधार ही, एक बूंद भी वीर्य की बाहर ना जाए इस शरीर से,
विवेकानंद ने भी तो कहा
था एक बूंद भी निकलनी नहीं चाहिए, एक बूंद भी उसको ऐसे अंदर में समा लो कि वो ऊपर से जाके शक्ति बन जाए, और वाणी और संकल्प और बोल में वाइब्रेशन पवित्रता की, ये है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो बनना है, ब्रह्मचारी वो अलग, उससे ऊपर की स्टेज हो। अच्छा ओम शांति, एक मिनट योग करते हैं, चलते
योग में हम इस पर के जो शक्ति है वो
एक हफ्ता एक काम करते हैं, एक हफ्ता खाली पवित्रता का करते योग में, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे सारी ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता फैल रही है, और सारे ब्राह्मण आत्माओं के अपवित्र संकल्प समाप्त हो रहे सब, ऐसे करो नहीं तो पूरा ब्राह्मण आत्माओं को भी देखो, टीवी के सामने बैठे हुए, टीवी के सामने बैठे हुए, कमरे कमरे अपना अपना कमरा बंद है, टीवी देख रहे, रात रात जाग रहे, मूवीज देख रहे, सिनेमा देख रहे, ये जो है ना, मुझे एक बार निर्भय भाई ने कहा था शांति वन का, दो तीन साल पहले सारा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया, मैंने कहा क्यों भाई साहब ऐसा क्यों किया, तो बोले पूरा लिस्ट निकाला, बिल निकाला, मतलब जो वेबसाइट जो विजिट कर रहे हैं ना लोग उसका, वो करुणा भाई ने पूरा निकाला क्या क्या वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो सब वो एडल्ट वेबसाइट, शांतिवन की बात बता रहा हूँ, तीन तब से शांतिवन में जो भी है ना कोई भी, पहले सबके पास इंटरनेट था, सिक्योरिटी सब सब सब, अभी बहुत लिमिटेड है, रेलवे वाले के पास खाली रेलवे का ही खुलेगा, बाकी नहीं खुलता है कुछ भी, डाउनलोड कुछ नहीं कर सकते, कोई YouTube डाउनलोड नहीं कर सकते,
उसके बाद भी कोई
करेगा वो तो अपना लैपटॉप, और वो जिसको तो वासना तो ऐसी, उसके वासना के मार्ग में कोई आएगा तो उसको हटा देगा, वासना इतनी शक्तिशाली होती हो, संसार में सबसे अधिक पावरफुल वासना है काम, इसको रोकना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, और जिन्होंने रोका है ना योगियों ने, वो संसार में उनसे ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ी आत्मा है वही है,
इसी में मास्टरी करनी है
भाई,
इसी में मास्टरी
करनी है, बस इसी में इतना इस पे इतना काम करो, इतना काम करो कि बस ये देह जैसे कि एकदम नफरत हो जाए,
सीरियसली है
बहुत बहुत, हाँ मतलब पॉजिटिव भी चाहिए पर थोड़ा नेगेटिव भी चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या पॉजिटिव कभी कभी कम हो जाता है, उस टाइम पे थोड़ा नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव मतलब संसार के प्रति नेगेटिविटी, देह के प्रति नेगेटिविटी वो भी चाहिए, नहीं तो क्या है, हम अभी हम जो नशे में है ना, जो ऊंचे सोमान में है, मैं परम जैसे अमृत वेला है, पर दोपहर में वो स्थिति नहीं है ना, दोपहर में प्यूरिटी थोड़ी कम होती है, उस टाइम पे माया आने की संभावना है, उस टाइम ऐसे कभी बोर हो जाता है तो ऐसा लगता है थोड़ा टीवी देखो, वो टीवी से माया घुस जाती है, उसके बावजूद भी ये माया आ सकती है, क्योंकि वो सारा दिन भर नहीं रहता है ना, वो थोड़ा समय रहेगा, सुबह रहेगा, शाम में रहेगा, दोपहर में क्या करोगे, या कभी कोई अचानक, ये थेरेपी है।
लेकिन इसमें
ज्यादा चिंतन भी नहीं करना है, पर पता रहना चाहिए।
ये तो हम हफ्ता भर ये ज्यादा चिंतन थोड़ा करना है, ये तो बता रहे कि
चिंतन ये करना है, हफ्ता भर ये चिंतन नहीं करना है, हफ्ता भर पवित्रता के ऊपर चिंतन करना है। पर अपवित्रता का ज्ञान जरूरी है, अपवित्रता का माया का ज्ञान जरूरी है, चिंतन करना। हाँ हाँ, ये क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है ना, 40-40, 50-50 साल वाले जाके शादी किए हैं, क्यों किए, कमजोर मतलब वही तो
कम, वही बता दिया ना कि ये नुकसान ये आ गए, इस पर आगे एकदम जल जाओ मर जाओ, इसलिए
पता है परंतु वो भूल जाता है।
उन्होंने कोई कम योग नहीं किया था।
हाँ,
ऐसा नहीं समझना,
वो उनसे सीखने, वो दादियों की पालना कम नहीं थी, बाबा की पालना कम नहीं थी, बाबा के सामने मिलने वाले, दृष्टि लेने वाले, बाबा से टोली लेने वाले, 10-10 मिनट बाबा ने जिनसे बात किया वो आज विकार में है। ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है हमारे लिए, इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, भाई जो उनका पार्ट था चले गए, ऐसा नहीं, क्यों गए जरूर, क्या मतलब ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि एक आत्मा के साथ हुआ ना दूसरे आत्मा के साथ भी होता, तो वो क्या कमजोरी थी उसको सोचो, चिंतन करो, ये परचिंतन नहीं है,
छोड़ना है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं,
ये परचिंतन नहीं है।
बीमारी निकालने की जो दवाई चाहिए निकालनी
चाहिए हमको, ये सब चिंतन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आंखों के ऊपर, जैसे वो भाई मुझे उस दिन पूछ रहा था, आंखें धोखा देती है क्या करे, उस दिन मिला था, वही तो है मेन, आंखों को सिविल बनाना बस। ओम शांति।
ये जो है सवेरे सवेरे वो श्रीमंत क्लास करते हैं राजू भाई।